रुके, वृक्षों से आवाज आई कि किस बेटे के लिए रोते हो, वो तुम्हारा था ही नहीं। इसका जन्म तो संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है, आपको ये रोना धोना बंद करना चाहिए, वापस लौट जाओ। अद्भुत ज्ञान वृक्षों से मिला, सुखदेव जी महाराज तो चले गए तपस्या के लिए और व्यास जी महाराज लौटकर अपने आश्रम में आए। नारद जी ने आकर इनका जो कष्ट था उसे दूर किया और चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा कि अपने मन को शांत रखो और ऐसा ग्रंथ बनाओ जिससे तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए और सबका कल्याण हो जाए। तो चार श्लोक जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने 10 बेटों को जब जन्म दिया तो सबसे 10वें नंबर पर नारद जी जो आए, तो सब और के तो विवाह हो गए, केवल नारद जी बिना विवाह के थे, तो सोचा कि यही कल्याण करेगा। सो चतुश्लोकी भागवत नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वही भागवत जाकर आज व्यास जी महाराज को सुना दी और व्यास जी महाराज ने इतना उसका विशाल रूप बना दिया, ऐसा इसका विकास किया कि आज 4 श्लोकों का आधार बनाकर और 18,000 श्लोक बनाकर तैयार कर दिया, विस्तार हो गया। 4 श्लोक के 18,000 श्लोक का विस्तार हुआ और सुंदर ग्रंथ बन गया जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की। भागवत भगवान जैसे ही प्रकट हुए, अब इसे पढ़ेगा कौन, बनाकर तो तैयार कर दिया, ध्यान लगाकर देखा, भविष्य के वक्ता हैं व्यास जी महाराज, बड़े विद्वान हैं, भाई ये भागवत तो बनाकर तैयार कर दिया लेकिन इसे गाएगा कौन। तब देखा कि भविष्य में मेरा ही बेटा सुखदेव परीक्षित को भागवत सुनाएगा, उसका कल्याण होगा, लेकिन बेटे को मैं भागवत पढ़ाऊंगा कैसे, वो तो घर छोड़कर चला गया, तो वापस लौटकर कैसे आएगा, मैं अगर जाऊंगा भी जंगल में तो वहां से भी भाग जाएगा, इसलिए अब मैं बुलाने नहीं जाऊंगा, अब तो ये अपने आप सोते ही आएगा। सो भागवत का ऐसा बढ़िया निर्माण किया, क्या सुंदर रचना है, अपने एक चेला को बुलाया और चेला को भागवत का श्लोक रटाया और कह दिया कि जहां मेरा बेटा सुखदेव तपस्या कर रहा है उसके सामने जाकर तुम ये श्लोक गाना और ध्यान रखना एक ही गाना, और जैसे ही दूसरे की सुनने की इच्छा हो तो कहना कि चलो हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोक बने हैं, तो कम से कम इस बहाने से घर से जो गया है वापस लौटकर आ जाएगा। चेले ने वो श्लोक तैयार किया, याद कर लिया और जंगल में जाकर सुखदेव जी को ढूंढ लिया और सुखदेव जी के सामने श्लोक गाना शुरू कर दिया। ध्यान रखना भाइयों, कथा तो हम लोग खूब सुनते हैं लेकिन जब तक कथा में श्लोक न गाया जाए तब तक कथा की सुंदरता नहीं है। चाहे कितना बड़ा मंच लगा लो, चाहे कितना बड़ा पांडाल बना लो, चाहे कितनी VIP व्यवस्था कर लो, लेकिन कथावाचक अगर श्लोक नहीं सुना रहा है तो समझ लो सब किया कराया बेकार। इसलिए चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन वक्ता ऐसा है जो शास्त्र की बातें करता हो और कौन ऐसा है जो सास बहुओं की बातें सुनाकर पूरा समय निकाल दे। प्रेम से बोलो राधे राधे, दिखावे पर मत जाना, थोड़ी अपनी भी अकल लगाना। और भैया शास्त्र की बातें तो वही कर सकता है जिसने शास्त्र पढ़ा हो, और जिसने शास्त्र कभी पढ़ा ही ना हो वो शास्त्र की बातें कैसे सुना सकता है। भैया तुम सामने काय को आए गए, जीवन बीत गए और कथा में जाते जाते सीख नहीं पाए कैसे जाना है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान रखा करो, कहीं पर जाते हैं तो अपना इंतजार करना चाहिए, जब सड़क पार करते तो देखकर ही करते ना, कोई आ तो नहीं रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई व्यवधान बन जाए भैया उसे पाप लगता है, तो मौका देखा करो कि कब कोई ऐसी बात आवे, कब कोई ऐसा कीर्तन आवे, कब कोई ऐसी चर्चा आवे, तब हम जाकर और प्रेम से स्वागत कर सकते। वैसे हमें स्वागत बुरा नहीं लगता, तुम्हारी कसम, कोई आएगा कुछ चढ़ाकर ही तो जाएगा, कुछ लेकर थोड़ी जाएगा, लेकिन उसका भी कुछ नियम है, सो नियम का पालन हमको करना चाहिए, बुरा मानना मत, जाएंगे तो हम 7वें दिन ही। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ तो भैया कौन सी चर्चा कर रहे, श्लोक की चर्चा कर रहे, शास्त्र की बातें जो करे ये कल्याण हमारा तभी होगा, सत्यनारायण की कथा घर में कराओ और सत्यनारायण की कथा ब्राह्मण ना सुनावे, दुनिया भर की बातें सुनावे 3 घंटा, तो कल्याण होगा क्या? इसलिए आप माताएं सबसे ज्यादा कथा में जाती हैं, और कथा में जब जाती हो तो कोई तुम्हें वक्ता मिल जाए, वक्ता सारे ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन कभी अवसर मिल जाए तो उनसे ये भी निवेदन करना कि भैया इधर उधर की बातें ना सुनाते हुए महाराज, हमें तो प्रेम से कथा ही सुनाओ, क्योंकि इधर उधर की बातें कल्याण कभी नहीं करेंगी, कल्याण केवल भगवान की कथा ही करेगी। तो शास्त्र की बातें जो हो, अब दुनिया की जो बातें कथावाचक भी सुनाते रहते हैं वो बातें तो हम सब ही जानते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना हम सब जानते हैं, हम जो नहीं जानते वो हमको बताना चाहिए, और जो नहीं जानते वो यहां पर रहस्य छुपा हुआ है। तो उस श्लोक को गुनगुनाने लगे सुखदेव जी के सामने, बड़ा सुंदर श्लोक गाया वेणु गीत का। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवासह कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर हैं, और जैसे ही इस श्लोक को सुना तो सुखदेव जी महाराज की आंखें खुली, ऐसा कौन है भैया? और जैसे ही एक श्लोक को गाया तो तुरंत सुखदेव जी ने कहा भैया बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बड़ा अच्छा गा रहे थे, थोड़ा सा और सुनाओ, इसके आगे का तो बताओ। गुरुजी की बात याद आ गई, चेले से कहा था एक ही सुनाना, ये था केवल सैंपल। जैसे किसान लोग होते ना, हम लोग कई किसान भी बैठे होंगे यहाँ पर, अपने यहाँ जो भी फसल उगाते हैं तो जब जाते ना उसको बेचने के लिए सेठों के पास मंडी में जाते हैं तो सैंपल लेकर जाते हैं, जाकर सेठ को दिखा लेते हैं कि भैया बताओ इसका क्या मोल लगाओगे, अगर तुम्हें पसंद आ जाए और रेट तय हो जाए तो बोरियां की बोरियां हमारे घर में रखी, हम भिजवा देंगे। तो माने भागवत के 18,000 श्लोकों में से एक सैंपल भेजा सुखदेव जी के पास, और वो इतना पसंद आ गया, भैया हमें और भी सुनना है, कह दिया हमें तो एक ही आता है, इससे ज्यादा हमारे गुरु जी के पास है, चलो। तो वही करना था, जिस घर को छोड़कर गए हाथ पकड़कर सीधे उसी घर में ले जाकर खड़ा कर दिया, अपने पिताजी को प्रणाम किया और 18,000 श्लोकों का ज्ञान अपने बेटे सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने दिया। बोली व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, भागवत की कथा सिखाने लगे अपने बेटे को, और वही भागवत की कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई। तो ये तो चर्चा थी वक्ता की, अब आइए आपको बिना देर किए हुए